लगता है यह संभव है, कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। Why and since when you follow Buddhism?
Why
and since when you follow Buddhism? Which thing inspired you to spread Buddhism all over the world?
Yeah. Well, I was brought up in England.
मैं इंग्लैंड में पला बढ़ा।
And when I was brought up, Buddhism was hardly known at all in England.
और जब मैं पढ़ा तब बौद्ध धर्म को शायद ही लोग जानते थे।
And I was brought up as a Christian.
और एक क्रिश्चियन करके मैं पैदा हुआ।
And well, when I was about 16, I decided that I couldn't believe in God.
और जब मैं 16-17 साल का था तब मुझे यह लगा कि शायद मैं ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ।
I dialed the number. G-O-D, but no answer.
तो जब मैंने G-O-D यह नंबर डायल किया मुझे जवाब नहीं मिला।
So I just felt I couldn't really continue as a Christian.
तब मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं क्रिश्चियन करके मैं नहीं रह पाऊंगा।
I'd met some good people, some good Christians, but I couldn't really believe in its main doctrines.
मैं कुछ अच्छे क्रिश्चियन लोगों को मिला लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगा कि पूरा जो इसकी तत्व प्रणाली है या जो दर्शन है वह मेरे लिए उचित है।
I went to university in London.
मैं लंदन की यूनिवर्सिटी में गया।
And there I studied philosophy.
और वहाँ पे मैं दर्शन शास्त्र जो है उसे पढ़ा।
And I came across the very great figure of Socrates, the Greek philosopher who lived at the same time as the Buddha.
जो बुद्ध के वक्त सबसे एक महान दार्शनिक जो थे सोक्रेटिस जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा।
एंड हिज अप्रोच टू फाइंडिंग द ट्रूथ अपील टू मी वेरी स्ट्रांगली।
और उनकी जो सत्य को खोजने की सत्य को खोजने का जो दृष्टिकोण था वह मुझे अच्छा लगा।
बट आई स्टिल डिडंट फाइंड फुल सैटिस्फैक्शन।
लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरी तरह समाधान उससे नहीं मिला।
And then one day it just occurred to me, well, there are other religions apart from Christianity.
और फिर मैंने खोजा कि क्रिश्चियन धर्म के अलावा भी और भी अन्य धर्म हैं।
But why don't I look at them?
तो मैं उनके तरफ क्यों नहीं देख रहा हूँ?
So I bought the Al-Quran.
तो मैंने अल-कुरान पढ़ी।
Vedas.
मैंने वेदों को पढ़े।
भगवद गीता
मैंने भगवद गीता पढ़ी।
उपनिषद्स
उपनिषदों को मैंने पढ़ा।
द टाओ टीचिंग
ताओ जो की टीचिंग है उसकी शिक्षाओं को मैंने पढ़ा।
टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस
कन्फ्यूशियस जो है जो दूसरे धर्म संस्था थे उनको पढ़ा।
बिग पाइल ऑफ बुक्स
ये काफी किताबें थी।
एंड आई बॉट अ बुक ऑन बुद्धिज्म
और मैंने बौद्ध धर्म के ऊपर एक किताब भी खरीदी।
It was a collection of scriptures by a famous English scholar.
तो बहुत ही मशहूर अंग्रेजी विद्वान थे उनकी कुछ किताबें थी बौद्ध धर्म के बारे में मैंने वो देखी।
So I tried to read the Vedas and the Upanishads.
तो वेद और उपनिषदों को मैंने पढ़ा।
Couldn't really make anything from them.
तो वह सब पढ़ के कुछ मुझे हासिल नहीं हो पाया मिल नहीं पाया।
And to shorten the story, when I read the book of Buddhist scriptures, I immediately felt, yes, this is what I've been looking for.
जैसे मैंने कुछ बुद्ध ग्रंथों को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको कुछ खोज रहा था तलाश का।
I felt that the Buddha was the ideal that I'd been searching for.
और मुझे लगा बुद्ध एक वैसे आदर्श है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ।
Then I decided I needed to meditate.
और फिर मैंने सोचा कि मैंने शायद ध्यान करना चाहिए।
First of all, I went to a Hindu guru teaching in North London.
North London में एक हिंदू गुरु थे मैं उनके पास गया सीखने के लिए।
But I couldn't connect with that.
लेकिन उनसे मेरा संबंध नहीं हो पाया या मैं उनसे जुड़ नहीं पाया।
And then I heard that Sangrakshita was teaching in Central London.
और मुझे ऐसे लगा कि संरक्षित यह कोई व्यक्ति है जो मध्य लंदन जो शहर है वहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं।
So I went to his meditation classes and I had a very good result immediately.
तो उनके जो ध्यान के जो वर्ग थे वहाँ पे मैं गया और उससे मुझे काफी यानी प्रेरणा मिली मुझे फायदा हुआ।
And I was particularly impressed by his presentation of the Dhamma.
और उनको उनकी जो धम्म रखने की जो शैली थी जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
So that's how I came across Buddhism and why I became a Buddhist.
उस तरीके से मैं बौद्ध बना और मैं अभी बौद्ध हूँ.
There was a very immediate response to the Buddha when I came across him.
तो जैसे ही मैं बुद्ध के समीप आया मेरा एक नैसर्गिक प्रतिसाद उनके प्रति था.
And I appreciated the Buddha's teaching so much. I wanted other people to have the benefit of it.
और जो फायदा मुझे हुआ जो मुझे उससे लाभ हुआ मुझे ऐसे लगा कि अन्य लोगों को भी यह मिलना चाहिए होना चाहिए.
At that time there were just a few people who were Buddhists in England.
तब काफी कम लोग बौद्ध थे इंग्लैंड में.
And so with other colleagues such as Dhammachari Lokamitra, we set up a center and well, we worked with Urjan Sangharakshita.
तो हमने दूसरा एक केंद्र निर्माण किया लंदन में धम्मचारी लोकमित्र जी के मदद से और वहाँ पे हमने पंथ की जो शिक्षा है वह देने के लिए काम किया.
I was the chairman of that center. He was the treasurer.
तो मैं उस केंद्र का चेयरमैन था वो ट्रेजरर थे.
Dhammadina, Dhammacharini Dhammadina was the secretary.
और धम्मचारिणी धम्मदिना उसकी सचिव थी.
And we worked very, very effectively together.
और प्रभावी रूप से हमने काम किया.
So yes, I wanted to share the Dhamma with other people because I valued it so highly.
तो मैं यह धम्म और लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी मूल्यवान है.
And then in 1985, Sangharakshita asked me to come to India.
और 1985 में संघर्षित जी ने मुझे भारत जाने के लिए कहा.
He wasn't able to come himself at that time. It had been planned that he would come. He wasn't able to come because his mother was ill.
वो स्वयं 85 में आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि उनकी माता जो थी वह बीमार थी इसलिए मुझे आना पड़ा.
And I arrived on the 6th of December 1985.
और 6 दिसंबर 1985 को वही दिन था जब मैं भारत में आया.
And I remember I went to a talk that Lokamitra gave in Pune at the big statue in the center of Pune.
तो पुणे शहर के मध्य स्थान में एक बाबा साहब का बहुत बड़ा पुतला था वहां पे लोकमित्र जी का प्रवचन था तो मैं उस कार्यक्रम में गया.
And there I met Dr. Babasaheb Ambedkar.
वहां पे मेरी मुलाकात बाबा साहब से हुई.
And I I really did feel I met him, even though, of course, he'd gone 20 years before, 30 years before.
भले ही 30 साल पहले बाबा साहब का निर्वाण हो गया था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं वाकई में वहाँ बाबा साहब को मिला.
And since then, I've definitely seen myself as his disciple.
और तब से मैं अपने आप को बाबा साहब का शिष्य समझता हूँ.
And I tried to serve his mission.
और उनका जो मिशन है उसके लिए मैं काम करता हूँ उसकी सेवा करता हूँ मैं उस मिशन की.
And I'm really glad that I came across the Buddha Dhamma at such a young age.
और मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ अपने आप को कि उस युवा अवस्था में मैं बौद्ध धर्म के संपर्क में आया.
I first came across the Buddha Dhamma when I was just 20, 21.
पहली बार मैं बौद्ध धर्म के संपर्क में आया जब मैं 20 या 21 साल का था.
I committed myself, became Dhammachari Subhuti when I was 25.
मैं 25 साल का था जब मैं धम्मचारी सुबूति बना.
And I'm really pleased that I was able to make that commitment so young in my life.
और मैं बहुत सुखद महसूस करता हूँ कि मेरे जब मैं युवा था युवा दिनों में ही मैंने अपने आप को उस कार्य के लिए कटिबद्ध किया.
And I have to say that I'm really pleased with the way that my life has gone.
और मैं बहुत सुखद महसूस करता हूँ जिस तरीके से मैंने मेरा यानी मेरा जीवन गया है.
And that I've been able to live such a satisfying life.
ताकि मैं इतना समाधानकारक जीवन जी पाया.
That life that has enabled me to meet all of you.
शायद उसी जीवन से मैं आप सब लोगों को मिल पा रहा हूँ.
I wouldn't have met you otherwise.
नहीं तो शायद मेरी और आपकी मुलाकात नहीं होती.
So that's a little bit of my own history.
तो यह मेरी छोटी सी कहानी है.
Maitreyi Vyo wants me to answer short, but I can't do that.
Why do you think some of Buddhist followers worship other communities and turn into Hinduism?
Why do some Buddhist followers,
Buddha's follower, worship other communities,
other communities,
and turn into Hinduism? Why Buddhists converted into Hinduism?
Okay.
सवाल यह है कि शायद पूछने वाले से और थोड़ा सा ये आगलावे हड़ के क्लैरिटी चाहिए थी आपको. शायद यह पूछना होगा कि क्यों बौद्ध लोग हिंदू बनते हैं, यह पूछना था.
यस,
हाँ ठीक.
द प्रॉब्लम इज दैट फॉर मेनी पीपल हु कन्वर्टेड इन 1956 एंड आफ्टरवर्ड्स, दे नेवर रियली डिस्कवर्ड व्हाट द बुद्ध धम्मा इज.
जो लोग 1956 में बौद्ध बने उन्होंने शायद ही खोजा कि क्यों उन्होंने शायद ही खोजा कि बुद्ध कौन है.
बाबा साहेब डाइड जस्ट 7 वीक्स आफ्टर कन्वर्शन.
धर्मांतरण के पश्चात 7 हफ्ते में ही बाबा साहब का निर्वाण हुआ.
दैट मीन्स दैट he wasn't able to initiate the movement of education in Buddhism that he'd hoped.
Education in Buddhism that he helped.
Yeah.
तो वो जो प्रक्रिया है कि बौद्ध धर्म की वाकई में शिक्षा क्या है और उसका आचरण कैसा करना चाहिए, उस प्रक्रिया को बाबा साहब शुरुआत नहीं कर पाए, ठीक से शुरुआत नहीं कर पाए.
So for many people, Buddhism just meant saying Jai Bhim.
तो बहुत लोगों के लिए बौद्ध धर्म का अर्थ है जय भीम कहना होता है.
That's all.
बस.
And you know, you put Baba Saheb's photo, you have a photo of the Buddha.
तो आप बाबा साहब का यानी तस्वीर रखते हैं और फिर बुद्ध की तस्वीर रखते हैं.
But for many people, that was Buddhism.
बहुत लोगों के लिए वही बौद्ध धर्म है.
It wasn't really their fault. There was nobody to educate them.
अब उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको उस तरीके से प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं था.
So, so many Buddhists in Maharashtra and no doubt elsewhere don't really know that much about Buddhism.
तो बहुत सारे महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं या महाराष्ट्र के बाहर भी हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में वाकई में जानते नहीं हैं.
And really, in a way, what's happened is that Buddhism has just become another caste.
तो क्या हुआ बौद्ध धर्म के साथ? बौद्ध धर्म भी एक जाति बन के रह गई.
It's just an alternative name for the old caste.
तो जो आपकी पुरानी जाति थी उसके लिए एक नया नाम मिला, बट उतना ही हो पाया.
It's just the way history turned out. The way history came.
हाँ, तो इस तरीके से इतिहास आया.
People didn't get the education in what Buddhism really is.
वाकई में बौद्ध धर्म क्या है इसका प्रशिक्षण नहीं ले पाए.
So people are under various pressures.
तो लोग भिन्न भिन्न दबाव में थे.
And they just drift themselves back to Hinduism or to Christianity.
तो फिर लोग फिर कुछ क्रिश्चियन बने, कुछ वापस हिंदुइज्म में चले गए.
So that shows our responsibility.
तो यह द्योतक भी है हमारी जिम्मेदारी का.
We need to really communicate what the Buddha Dhamma means.
इसका अर्थ यह भी होता है कि वाकई में हमें यह लोगों को बताने की आवश्यकता है कि बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है.
Because people don't know.
क्योंकि लोग जानते नहीं है.
It's not their fault. Nobody told them.
यह उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं, वैसा प्रशिक्षण दिया नहीं.
So there's a big responsibility on us to communicate what the Dhamma really is.
तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि बौद्ध धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है.
I'm sure many of you will have found yourselves in this position.
और मुझे आशा है या मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आप में से भी ऐसे लोग हैं जो इस परिस्थिति में हैं.
You know you're a Buddhist.
आपको पता है आप बौद्ध हैं.
But you don't really know what it means.
लेकिन आपको पता नहीं उसका अर्थ क्या है.
So we need to make sure that people find out.
तो हमने प्रयास करने चाहिए कि लोगों को यह मौका मिले यह ढूंढने का.
So let's all make a really big commitment to try to practice the Dhamma ourselves and communicate it to others.
तो पूरी कोशिश कीजिए कि बौद्ध धर्म आचरण करने का और अपने आप को उसके लिए कटिबद्ध करने का.
There's another factor that it's worth reflecting on.
और एक आयाम है जिसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए.
Often people they improve themselves socially.
लोग क्या है सामाजिक स्तर पर अपनी उन्नति करते हैं, अपनी प्रगति करते हैं.
And they don't want to other people to know that they're Buddhist because that means they know what caste they come from.
तो बहुत सारे लोग छुपाते हैं कि लोग शायद यह खोज ना निकाले कि वो बौद्ध है, कि क्योंकि अगर वो जान जाते हैं कि वो बौद्ध है तो फिर वो ये भी जान जाते हैं कि उनकी जाति क्या है.
Because unfortunately in India, Buddhist means scheduled caste.
तो यह दुर्भाग्य की बात है, भारत में जो भी लोग बौद्ध है इसका अर्थ यह होता है कि वे शेड्यूल कास्ट.
That's not what it means, of course.
अब यह बौद्ध होने का अर्थ नहीं है.
But because of this caste mentality, even Buddhism, it just perceived as a caste.
चूंकि जो जाति की जो मानसिकता है उस मानसिकता के कारण बौद्ध धर्म भी उसी परिप्रेक्ष्य में लोग देखते हैं.
So people don't want to be thought of as scheduled caste.
तो
don't want others to think of the schedule.
तो अन्य लोग हमारे बारे में हम शेड्यूल कास्ट है ऐसा सोचे, ऐसा वो नहीं चाहते.
So they put up Hindu pictures.
तो वो क्या करते हैं फिर हिंदू जो फोटो है वो लगाते हैं.
But yeah, we should stop thinking of Buddhism as something that's to do with caste.
तो हमने बौद्ध धर्म को एक जाति है ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए.
I'm not scheduled caste. I'm no caste.
अब मेरी कोई जाति नहीं है, मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूँ.
I don't have caste.
मेरे पास जाति नहीं है.
We didn't have it in England when I was young.
जब मैं युवा था तब वो जाति इंग्लैंड में नहीं थी.
Yeah, we had class, of course.
निश्चित रूप से वहाँ पे क्लास था.
But that's very different, huh?
लेकिन वो बहुत अलग है.
So Buddhism has nothing to do with caste.
तो बौद्ध धर्म का जाति से कोई संबंध नहीं है.
In fact, Buddhism is the rejection of caste.
लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह जाति को नकारता है.
So we mustn't think of it in those terms, huh?
तो हमने इस दृष्टिकोण से इसे देखना नहीं चाहिए.
We should be proud of being Buddhists.
और बौद्ध होने का हमें स्वाभिमान होना चाहिए.
Being a Buddhist means that you're standing up as a human being, independent of all caste affiliation.
बौद्ध होने का अर्थ यह होता है कि आप किसी भी जाति से अपनी पहचान नहीं करते और एक सच्चे व्यक्ति करके खड़े होते हैं.
So we need to communicate this sort of spirit.
तो इस तरीके की जो चेतना है यह आपने संवादित करनी चाहिए.
Let people know what Buddhism really means.
और लोगों ने यह जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म का अर्थ वाकई में क्या है.
Baba Saheb converted because he wanted that to be the basis for a new India.
बाबा साहब ने धर्मांतरण इसलिए किया क्योंकि वो यह चाहते थे कि यह नए भारत की एक संकल्पना बने, एक न्यू बने.
But eventually he thought of Buddhism as affecting everybody in India.
और शायद बौद्ध धर्म का असर हर व्यक्ति के ऊपर हो, यह वो चाहते थे.
So we should really keep that in mind.
तो यह हमने अपने मन में रखना चाहिए. अगर कोई धम्मटाक में अदर कास्ट के स्टूडेंट या मेंबर हो तो उसे कैसे मैनेज करें? इफ इन धम्मटाक इफ देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कास्ट, सो हाउ टू मैनेज देम?
यू डोंट नीड टू मैनेज देम.
आपको उनको मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है.
दे विल मैनेज देमसेल्व्स.
वो स्वयं ही अपने आप को मैनेज करेंगे.
द डम्म It's just for human beings.
क्योंकि धम्म जो है वह इंसान के लिए है.
So make sure you communicate the dhamma.
तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप धम्म बोल रहे हैं.
And try to communicate in that sort of way.
और इस तरीके से आपको इस दृष्टिकोण से आपने धम्म देना चाहिए.
This relates to what I just said.
यह उसी से ही संबंधित है, संलग्न है जो मैंने अभी अभी जो कहा.
Sometimes you Maharashtrian Buddhists, you think you own Buddhism.
बहुत बार महाराष्ट्रियन बौद्ध लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि वो बौद्ध धर्म की वो जागीर समझते हैं, बौद्ध धर्म उनकी जागीर है ऐसा उन्हें लगता है.
Gandhian Buddhists. you think that it's a caste thing, huh? Unconsciously, that's what you think.
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ऐसा सोच लेते हैं कि यह मेरे जाति का प्रश्न है बौद्ध होना.
But Buddhism is just to do with human beings.
लेकिन बौद्ध धर्म का जो संबंध है वह इंसान से है.
That's why Baba Saheb chose Buddhism.
इसीलिए ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना.
So when you communicate the Dhamma.
तो जब आप बोलते हैं तब आप धम्म बोलिए.
What I've been speaking these few days, I hope. It's just about what it is to be a human being.
मुझे आशा है आपने वही दृष्टिकोण से मुझे समझा होगा. जो कुछ भी मैं बोल रहा था वह इंसानों के लिए बोल रहा था.
It's the denial of caste.
इसी का मतलब है मैं जाति का विरोध करता हूँ.
So yes, make sure you speak about human experience.
इसलिए हम मानवीय अनुभवों की बात करनी चाहिए.
There's no need to insult other religions.
और धर्मों का अपमान करने की भी जरूरत नहीं है.
We don't need to say, oh, Hinduism's bad, Christianity's bad, or whatever.
आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुइज्म गलत है या क्रिश्चियनिटी गलत है.
Let people see for themselves.
लोगों को मौका दीजिए अपने आप खोजने का, ढूंढने का.
The dhamma is ehi pasiko.
धम्म का अर्थ होता है यही पस्सिको.
You know, you say that in a Tiruttanavanda, ehi pasiko.
आप कहते हैं यही पस्सिको त्रिरत्न वंदना में.
ehi means come.
यही का अर्थ होता है आना.
Pasiko means see.
पस्सिको का मतलब होता है पहाने, means देखना.
Come and see.
आइए और देखिए.
If you come and see the Dhamma, you'll see whether it's right or not.
जब आप स्वयं आएंगे और उसे खोजेंगे तभी आप उसे जान पाएंगे ये सही है या गलत है.
So we don't need to insult anybody, we don't need to talk against anybody.
किसी के विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ यानी वाद करने की आवश्यकता नहीं है.
We need to respect other people.
और लोगों का आदर करना चाहिए.
Well, if you believe that, that's okay. That's your choice.
और अगर आप इस पे विश्वास रखते हैं तो या फिर आप उनको उनके चुनाव के ऊपर छोड़ दीजिए.
But this is what I believe, this is what I follow.
मैं इसके ऊपर विश्वास रखता हूँ, मैंने इस तरीके से इसे खोजा है.
If it's useful to you, please take.
अगर आपके उपयोग का यह है तो आप लीजिए.
That was the Buddha's attitude.
यही बुद्ध का दृष्टिकोण था.
Ehi pasiko.
आइए और स्वयं देखिए.
And I think we all need to be aware that more and more people from other communities are interested in Buddhism.
इस बात को भी जानिए कि बहुत सारे समुदाय और समाज के लोग हैं जो बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं.
I don't know what communities you all come from.
अब मुझे नहीं पता आप किस जाति समुदाय से आए हुए
हैं. I don't care.
मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता.
It's not my business.
वह मेरा काम नहीं है.
But I hear that there are people from different communities here.
लेकिन मैंने सुना है कि अन्य समाज से भी लोग यहाँ हैं.
Salu! I'm really pleased there are people from different communities.
साधु कहने का अर्थ होता है कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मुझे बहुत खुशी है वो लोग यहाँ पे.
I want people from every community in India here.
मैं चाहता हूँ कि हर समाज से लोग यहाँ आए और बौद्ध धर्म को सीखे.
Then we can get rid of this caste thing.
ताकि हम सभी जातियों से मुक्ति पाए, जाति व्यवस्था से मुक्ति पाए.
So let's talk to people as human beings.
तो एक इंसान होने के नाते आप उनके साथ बात कीजिए.
You're welcome, whatever caste you come from.
किसी भी जाति समुदाय से आप, वो सभी का यहाँ स्वागत है.
Ehi pasiko.
आइए और देखिए.
See what you can see. If you like it, take it.
देखिए आप क्या खोज रहे हैं. आपको अगर पसंद है तो आप इसे लीजिए.
If you don't like, that's okay. That's your choice.
अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे आपका वह यानी आपकी इच्छा.
So yes, if there are people from different communities in your talks or in your group or whatever, well, remember that.
तो अगर आपके ग्रुप में, टॉक में, जहाँ कहीं भी किसी भी समाज के लोग हैं उनको याद रखिए, उन्हें देखिए.
But don't speak to them as if they were part of your caste.
Don't
speak to them as if they're just part of your caste.
तो आप ऐसा मत देखिए कि वो केवल मेरे जाति समुदाय से है या नहीं.
And don't speak against whatever they may come from.
और किसी के भी विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी लोग आए.
Just speak to human beings.
इंसानों के साथ आप संवाद कीजिए.
This was Baba Saheb's approach.
यह बाबा साहब का दृष्टिकोण था.
This is why he came to the Buddha Dhamma.
यही कारण है कि क्यों वे बौद्ध धर्म में आए.
He said he chose the Buddha Dhamma because it preached liberty, equality, and fraternity.
उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता और बंधुता सिखाता है.
And that appeals to every human being.
और यह हर इंसान के साथ इसका संबंध है.
So this is really important for us to recognize.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण है इसे पहचानना.
I feel really strongly about this.
और मैं बहुत गहराई से इस बात को महसूस करता हूँ.
I want our NNBY to be for all people.
मैं चाहता हूँ कि NNBY जो है वह सभी लोगों के लिए हो.
I want our TBM to be for all human beings.
मैं चाहता हूँ कि जो त्रिरत्न बौद्ध संघ है वह सभी के लिए हो.
And I hope that we all have that attitude and approach. approach.
और मैं यह चाहता हूँ कि वही हमारा नजरिया हो, वही हमारा दृष्टिकोण हो.
And we remember that there are people we don't know where they come from.
और हमें पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, लेकिन हमने उन्हें याद रखना चाहिए.
We don't have to talk aggressively about other communities, other beliefs.
किसी भी अन्य विश्वास के या श्रद्धा के विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं है.
But you have to remember also that other people may not have the same deep feeling for Baba Saheb that you have.
और यह भी जानिए कि किन लोगों की बाबा साहब के प्रति बहुत गहरी भावना होगी ही, ऐसा नहीं है.
They haven't experienced the same liberation from him, but you have.
जैसे उन्होंने कुछ लोगों को जो मुक्ति दी है, शायद वह मुक्ति उन लोगों का अनुभव ना हो.
So be sensitive about that.
तो उसके बारे में आप संवेदनशील रहिए.
And slowly draw them in to appreciate what Baba Saheb really wanted for India.
और उन्हें यह याद दिलाइए, बताने की कोशिश कीजिए कि क्या बाबा साहब पूरे भारत के लिए चाहते थे.
This is a really important topic and I hope that what I said is clear.
यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है. मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है वह स्पष्ट होगा.
It's really worth everybody reflecting upon it and discussing it.
यह बहुत योग्य ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर किसी ने चिंतन करने की आवश्यकता है.
I think that Buddhism is entering a new phase in India.
मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है.
We find that there are more and more people coming from different communities.
और हम देख रहे हैं कि अन्य समाज से ज्यादा लोग आ रहे हैं.
But this was what Baba Saheb really wanted.
और यही बाबा साहब चाहते थे.
बस.
There are two questions which are related, so you can answer jointly. How are the Sangha and politics related to each other? And we are Buddhist, but Dr. Ambedkar said that we need a political power. So how we can achieve that? Baba Saab ne, hum to Baudh hai ya Baudh ho rahe hai, lekin Baba Saab ne bola tha ki satta leni chahiye. राजनीति सत्ता तो वो कैसे आई?
Well, the plain fact is that though you be a Buddhist, you're also a citizen.
स्पष्ट तथ्य यह है कि भले ही आप बौद्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी देश के नागरिक हैं.
You're also a voter in your society.
आपके समाज में आप मत देते हैं.
And by समाज, I mean the whole of Indian society.
और जब मैं समाज कहता हूँ, तब समूचे समाज की बात कर रहा हूँ, किसी जाति विशेष की नहीं.
Not just हमारे लोग.
केवल हमारे लोग, यह समाज की बात नहीं कर रहा.
You are a voter. You are a citizen of the Republic of India.
जो स्वतंत्र सार्वभौम भारत है, उसके आप नागरिक हैं.
I'm a citizen of the Kingdom of the United of United Kingdom and Great Britain.
तो मैं जो Great Britain है, उसका नागरिक हूँ.
And well, when voting time comes, I vote.
जब मत देने का समय आता है, तब मैं मत देता हूँ.
And I vote for the party that I believe will do most good for the country.
और मैं उस पार्टी के लिए मत देता हूँ जिससे मेरे देश का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, भला हो.
Not just most good for me, but the most good for the country.
केवल मेरे लिए नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को किससे भला होगा, उसके लिए मैं वोट देता हूँ.
So everybody who is a voter has that responsibility.
तो जो कोई भी मत देता है, उसको वह जिम्मेदारी है.
So exercise your responsibility as a citizen and vote.
तो आप अपने मत का इस प्रकार से अभ्यास कीजिए या इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप एक जिम्मेदार नागरिक रहे.
And try and work out which party will best serve the interests of the whole country.
और आप ही देखिए कि कौन से पार्टी, जो पार्टी है, वह ज्यादा से ज्यादा अपने देश का भला करेगी.
Not easy.
लेकिन यह कठिन है.
Because none of them are perfect.
क्योंकि उनमें से कोई भी आदर्श नहीं है.
But you choose as best you can in the circumstances.
लेकिन ऐसे परिस्थितियों में जो अच्छा है, उसे हम चुनते हैं.
And of course, some Buddhists will need to involve themselves in active politics.
और कुछ बौद्ध लोगों को जो सक्रिय राजनीति है, शायद उसमें सहभाग लेना पड़ेगा.
And but the main thing is that those who involve themselves in active politics do so on an ethical basis.
लेकिन वो जो बौद्ध लोग हैं, जो राजनीति में हैं, उनकी जो नींव है राजनीति करने की, वह नैतिकता होनी चाहिए.
So There's much more to say, but that'll do for now.
तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा इसके बारे में.
But what I would say is that you will find issues arise around you.
लेकिन आप यह देखेंगे कि जो समस्या है वह आपके इर्द गिर्द आ रही है.
And put your efforts into resolving those issues.
और अपने जो प्रयास है उन समस्याओं को सुलझाने में लगाइए.
I think, for instance, is a major issue of the status or the of violence against women.
सबसे महत्वपूर्ण जैसा एक मुद्दा है उदाहरण के लिए जो महिलाओं के प्रति हिंसा है या हिंसा है उत्पीड़न है.
And at last, that's coming out into the open. At last, that's coming out into the open.
अंततः वह भी बातें अभी खुली हो रही हैं.
So do what you can to agitate against that.
उसके विरोध में यानी जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में आप जो संघर्ष कर सकते हैं वह कीजिए.
There's violence on a caste basis.
जाति के आधार पर या जाति मूलक हिंसा है.
Agitate against that.
उसके विरोध में संघर्ष कीजिए.
So involve yourself in active politics to resolve particular issues.
तो आप सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका हल ढूंढने के लिए.
But the difficult thing is to do that on an ethical basis.
लेकिन सबसे कठिन यह है कि नैतिक मूल्य पर इसका सुझाव निकालना.
Without violence, without hatred.
आप किसी की हिंसा ना करें किसी का द्वेष ना करें.
But yes, Buddhists have to involve in politics.
लेकिन हाँ बौद्ध लोगों ने यानी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए.
But what Baba said was that in the end, that power needs to be based on a change in mentality.
लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे या उनकी सोच क्या है कि अंततः जो उसका परिणाम है वह उनके मन परिवर्तन या उनका जो नजरिया है वह बदलने में होना चाहिए.
So I think we need to struggle much more vigorously to spread the Buddha Dhamma.
इसलिए आपको काफी संघर्ष करना होगा बौद्ध धर्म को प्रसार प्रचार करने के लिए.
And that will give a better basis for political change.
और राजनीतिक परिवर्तन के लिए यह एक अच्छी बुनियाद देगा. एक विद्यार्थी करके मेरे जीवन में लक्ष्य क्या रहना चाहिए और हम उससे किस तरीके से हासिल कर सकते हैं. बीइंग अ स्टूडेंट हाउ शुड आई स्पेंड माय लाइफ एंड व्हाट शुड बी माय ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन आई अचीव दैट.
यस यू सेड. वेल आई थिंक आई हैव सेड क्वाइट अ बिट अबाउट व्हाट आई थिंक.
तो मुझे ऐसे लगता है इसके बारे में मैंने काफी कुछ कहा है.
In talking about education, agitation, and organization, I've said quite a bit about that.
यह जो तीन मैंने प्रवचन दिए उन प्रवचनों में मैंने यह बातें कही हैं.
But I think you need to apply everything that I've said.
तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने इन बातों को इसकी अमल बजावनी करनी चाहिए.
In getting an education, don't just focus on qualification.
जब आप शिक्षा लेते हैं तो केवल जो डिग्रियां लेना जिसे कहते हैं उसे ही मत लीजिए.
Try to get a broad education.
जो एक विशाल जो शिक्षा है या शिक्षित होना जिसे कहते हैं वाकई में वो कीजिए.
Try to develop yourself.
अपने आप का विकास करने की कोशिश कीजिए.
Try to grow as a human being.
एक इंसान होने के नाते विकसित होने की कोशिश कीजिए.
And become, take responsibility, take initiative.
अगुवाई लीजिए जिम्मेदारी उठाइए.
Take that inner initiative, take that outer initiative that we talked about.
आंतरिक रूप से अगुवाई लीजिए बाह्य रूप से अगुवाई लीजिए.
And become involved in sangha.
और संघ में सम्मिलित होने की कोशिश कीजिए.
Probably one of the most important things you could do with your life.
शायद यही सबसे अच्छी बात है अपने जीवन में हम कर सकते हैं.
Become deeply involved with other people in real friendship based on the Dhamma.
धम्म के बुनियाद के आधार पर जो सच्ची मैत्री है उसमें प्रवेश कीजिए.
So while you're pursuing your studies, try to put time into these other things.
तो जब आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो इन सब चीजों में अपना ध्यान रखिए. How can we reduce the jealousy in the youth to improve friendship for an organization? तो हम जो jealousy है जो ईर्ष्या हम ईर्ष्या को कैसे कम कर सकते हैं जब हम युवाओं में दो अच्छी दोस्ती के लिए और अच्छे संगठन के लिए
ईर्ष्या. In English, we say green-eyed jealousy.
हम उसे ऐसा कहते हैं कि ग्रीड आई की जेलेसी.
Green. Green-eyed, not.
Sorry.
Green. Hull.
Yeah. Green-eyed.
Jealousy.
Jealousy. तो हरी आंख वाली जेलेसी. हरी का मतलब यहाँ जो हल निकालता है वो.
Yes, so jealousy is a very painful emotion, isn't it?
Jealousy जो है यह काफी पीड़ादायक होती है.
Particularly where ishq is involved.
Jealousy अधिक होती है अगर इश्क वहाँ पे हो तो.
I've got some experience of this.
हाँ.
I've got some experience of this.
मुझे स्वयं उसका अनुभव है.
Long time ago, not now.
अभी नहीं बहुत पहले.
But there's all sorts of jealousy, isn't there?
लेकिन बहुत अलग अलग तरीके की ईर्ष्याएं होती है.
You see somebody giving a really good talk.
अब आप देखिए कि कोई बहुत अच्छा प्रवचन देता है.
And you see everybody clapping them.
और हर व्यक्ति उसके लिए तालियां बजाता है.
And you feel jealous.
और हमें ईर्ष्या होती है.
You see somebody, you know, very good at sport.
कुछ लोग खेल में बहुत अच्छे होते हैं.
They get the big cup.
और उन्हें बड़ा कप मिलता है.
And you feel jealous.
और आप में ईर्ष्या आती है.
You see somebody else get very good marks and get a lot of praise.
और बहुत सारे लोग को अच्छे मार्क मिलते हैं और उनकी तारीफ होती है.
You feel jealous.
और आपको ईर्ष्या होती है.
It's a very painful and unpleasant emotion.
Jealousy जो है यह बहुत ही पीड़ादायक भावना है.
Jealousy, Hindi शब्द.
ईर्ष्या.
Hindi शब्द
नहीं.
Jealousy.
ईर्ष्या जो है यह पीड़ादायक भाव है.
So why do we feel jealous?
तो क्यों हमें ईर्ष्या होती है?
It's as if when somebody else achieves something, you feel diminished.
यह ऐसा भाव है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को हासिल करता है और आप अपने आप को नीचा समझते हैं.
He gives such a good talk. He gives such a good talk.
मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया.
So you feel, oh, I'm nothing.
तो आपको ऐसे लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया.
So you lose your confidence when somebody else achieves something.
तो हम हमारा आत्मविश्वास खोते हैं जब कोई व्यक्ति अगर कुछ बात को हासिल करता है.
So what you need to do is recognize your own good qualities.
तो क्या हमें करना है कि हम में जो अच्छे सद्गुण है जो गुण है उन्हें पहचानने की आवश्यकता है.
Somebody else's achievement seems to say that you're nothing.
किसी का जो हासिलियत है उपलब्धि है उसे हम ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ.
But you've got good qualities.
लेकिन आप में गुण है आप में क्षमताएं हैं.
There's something you're good at.
कोई तो भी बात है जो आप में अच्छी है.
Yeah, there's something that you are positive in.
कोई तो भी ऐसी बात है जो आप में विधायक है.
So it's really important to know those good qualities that you have.
तो यह महत्वपूर्ण है जानना कि जो आप में अच्छे गुण है.
That's what we're doing in the first stage of the Maitri Vikas.
तो मैत्री विकास जब हम करते हैं तो उसके पहले चरण में हम यह बात करते हैं.
We're feeling metta for ourselves.
अपने स्वयं के लिए हम मेत्ता भाव रखते हैं.
Jealousy is the opposite of that.
जेलसी ईर्ष्या जो है वो उसके विरोध में है.
Somebody else's achievement means you're nothing.
किसी की जो उपलब्धि है उसको आप ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ.
So you need to work at developing maitri for yourself.
तो अपने आप के लिए इस मैत्री का विकास करना महत्वपूर्ण है.
All maitri comes from maitri for yourself.
सारी जो मैत्री है वह आपकी अपनी जो मैत्री है वहां से आती है.
So yes, if you feel that jealousy, as soon as you feel it, recognize it.
तो जैसे ही आप ईर्ष्या महसूस करते हैं आप उसे पहचानिए.
Everybody feels it sometimes.
हर व्यक्ति ईर्ष्या महसूस करता है.
It's a common emotion.
क्योंकि यह सामान्य या स्वाभाविक भाव है.
Don't make yourself feel worse by realizing you feel jealousy.
आप अपने आप को अपात्र मत समझिए जब आप इस ईर्ष्या भाव को महसूस करते हैं.
Then reflect on your own good qualities.
और जो आपके अपने अच्छे गुण हैं, उनके बारे में आप चिंतन कीजिए.
Let other people achieve.
और लोगों को जो उनकी हासिलियत है या उपलब्धियां हैं उन्हें करने दीजिए.
Rejoice in their merits.
उनका पुण्यानुमोदन कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए.
Clap.
उनके लिए तालियां बजाइए.
Speak about how good they did. How well they did.
और कितना अच्छा उन्होंने किया उसके बारे में उनका पुण्यानुमोदन कीजिए.
And reflect on your own good qualities.
और आपके जो अच्छे गुण हैं उसके ऊपर चिंतन कीजिए.
It's more difficult where ishq is concerned.
लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होता है जब वहां इश्क होता है.
But what's happened then?
लेकिन इश्क में क्या होता है?
Why do you feel jealous?
हम क्यों ईर्ष्या महसूस करते हैं?
It's as if your self-security has got bound up with her or him.
क्योंकि in इश्क
yourself, yeah, in ishq, your self-secure, your self-idea has become mixed up with them.
तो क्या होता है ऐसे परिपेक्ष में आपकी अपनी जो सुरक्षितता है या जो पहचान है आप किसी और के साथ बांध देते हैं.
Your good feeling about yourself is mixed up with them.
आपकी जो अपनी अच्छी भावना है आपने उनके साथ उसको मिला दिया है.
You need to detach that.
और उससे हमें अनासक्त होने की आवश्यकता है.
I promise you, if you rely upon another person to feel good yourself, you will have a painful life.
मैं आपको इस बात को यानी दावे से यह कहता हूँ, अगर आपने अपने आपका सुख किसी औरों के साथ या आसक्त होकर जोड़ा है, तो अंततः आपको दुखी होगा.
You have to find your happiness inside yourself.
आपकी आपका जो सुख है आपने अपने स्वयं के अंदर ढूंढना चाहिए.
You have to find your confidence in you.
आप में आत्मविश्वास होना चाहिए.
If you rely on somebody else, you will suffer.
और अगर आप किसी और के ऊपर निर्भर हैं, तो आपको दुख होगा.
So it's a good question. I'm very pleased that was asked.
यह बहुत अच्छा सवाल है. मुझे खुशी हुई किसी ने यह पूछा.
But we need to realize we can work with it.
लेकिन आप इस बात को जानिए कि आप इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं.
And of course, friendship will help very much indeed.
और जो मैत्री है वह मदद करेगी.
मित्रता, मित्रता, friendship.
मित्रता मदद करेगी.
Because you'll be able to talk with your friends about what you're feeling.
क्योंकि जब आप यह महसूस कर रहे हैं तब आप इस भावनाओं को अपने दोस्त के साथ बांट पाएंगे.
And if they're really good friends, they'll help you to deal with it.
और अगर आप सही में आपस में अच्छे मित्र हैं तो आप उसके ऊपर कार्य करने के लिए मदद करेंगे.
But it's a common issue.
लेकिन यह सर्वसामान्य विषय है.
And the less confidence you feel in yourself, the more you will feel jealousy and competitiveness.
जितना ज्यादा आत्मविश्वास आप अपने आप के ऊपर रखेंगे उतनी ही कम स्पर्धा और ईर्ष्या आप अपने आप में महसूस करेंगे.
Develop that confidence in yourself, that maitri for yourself.
तो अपने आप के लिए इस मैत्री भाव को महसूस करना आवश्यक है. What is the difference between dhammachari and bhante?
Dhammachari and
bhante means monk and dhammachari.
Of course, the bhikshus are part of the bhikshu sangha, which was originally formed by the Buddha.
भिक्षु वो लोग हैं जो भिक्षु संघ के सदस्य थे जो बुद्ध ने यानी स्थापित किया था.
And when Bhante Sangharakshita, when Urgyen Sangharakshita decided or started teaching in the West, he realized there was a new approach needed to Sangha.
और जब उर्गेन संगरक्षित इंग्लैंड में थे यानी भारत में रहकर जब उन्होंने वहां पे संघ की स्थापना की तो उनको लगा कि संघ को एक नया दृष्टिकोण की आवश्यकता है.
He realized that both those who were celibate and those who were married or not celibate could practice the Dhamma fully.
और उन्होंने ऐसा महसूस किया, आप विवाहित हो या अविवाहित हो, ब्रह्मचर्य हो या न हो, सभी लोग धम्म का आचरण कर सकते हैं।
He realized that just because you wear the yellow robe doesn't mean that you're necessarily a good Buddhist.
अब यह इसका यानी ऐसा नहीं होता है कि किसी ने चिवर पहन लिया तो वो बौद्ध हो जाते हैं।
Just because you don't have the yellow robe doesn't mean that you're not able to teach the Dhamma.
और आपके ऊपर चिवर नहीं है इसलिए आप धम्म नहीं पढ़ा सकते, ऐसा भी नहीं।
But I'm afraid that so many bhikshus in India today are really not active.
और यह बात बताते हुए मुझे खेद होता है कि बहुत सारे जो भिक्षु हैं भारत में सक्रिय नहीं है जितने भी होने चाहिए।
There are good bhikshus, many of them.
बहुत सारे अच्छे भिक्षु हैं जो सक्रिय हैं।
But there are many who are asleep.
लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो सोते हैं।
There are many who are just bhikshus for...
बहुत सारे भिक्षु केवल अपना फिर वो पेट पालने के लिए होते हैं।
बाबा साहेब हिमसेल्फ वाज वेरी अवेयर ऑफ दिस।
बाबा साहब स्वयं इसके बारे में काफी जागरूक थे।
You remember in the Buddha and the future of his religion, he spoke very strongly about this.
आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस आलेख में बाबा साहब ने इस बात को कहा।
He said the bhikshu sangha today is a huge army of idlers.
उन्होंने ऐसा कहा कि जो भिक्षु जो है वह एक जो काम नहीं करते निष्क्रिय ऐसी सेना है।
Speaking very strongly.
बहुत ही यानी प्रबलता से उन्होंने उनकी आलोचना की।
I don't want to say that because there are very good bhikshus.
मैं वैसा नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत अच्छे भिक्षु को यानी भिक्षु हैं।
But Urgyen Sangharakshita felt we needed to have a new approach to sangha.
और उन्हें ऐसे लगा कि संघ को एक नए आयाम की दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
So a dhammacharya or dhammacharini is one who is fully committed to the three jewels.
तो धम्मचारी या धम्मचारिणी वह है जो त्रिरत्नों के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है, समर्पित है।
But they're not necessarily celibate.
लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे अविवाहित या ब्रह्मचारी रहे।
Many of them will be married.
बहुत सारे लोग विवाहित हैं।
So he felt that in this modern world we needed a new approach.
और उन्हें ऐसे लगा कि आधुनिक जगत में एक नया दृष्टिकोण, नया आयाम हमें चाहिए।
So Baba Sahib himself seems to have foreseen this.
और बाबा साहब ने स्वयं इस बात को देखा। What is mean by Buddha and why we call Bhagwan to Buddha?
Well, to ask what do we mean by Buddha is a large question.
अब बुद्ध का अर्थ क्या है यह पूछना एक बहुत बड़ा सवाल है।
I think quite a lot has been said already about that. If I might Maitreya Nagarjuna.
उसके बारे में काफी कुछ बातें मैत्रीवीर नागार्जुन ने बताई है।
But let me just approach first of all this question of Bhagavan Buddha.
लेकिन जो भगवान बुद्ध है इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा।
Well, nowadays Bhagavan in the modern Indian context means God.
आधुनिक भारतीय परिस्थिति में भगवान शब्द का अर्थ यह हम निकालते हैं जो ईश्वर है।
But in Pali and in early Buddhist Sanskrit, that's not what it meant at all.
लेकिन पाली और जो पूर्व संस्कृत जो प्राचीन या पहले जो संस्कृत बन रही थी तब की जो संस्कृत थी वहां पे भगवान शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है।
It meant somebody who is full of good qualities.
उसका अर्थ यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें काफी अच्छे गुण है।
Somebody who shone with good qualities.
ऐसा व्यक्ति जो अच्छे गुणों से दर्शाया गया है, बाहर आया है।
And it was the usual way of referring to the Buddha.
और यह एक सामान्य बात है, संबोधन है बुद्ध को पुकारने के लिए।
So it definitely has nothing to do with God.
तो यह निश्चित रूप से इसमें यानी ईश्वर से इसका संबंध नहीं है।
In the Buddhist context, nothing to do with God.
बौद्ध परिपेक्ष में इसका संबंध ईश्वर से नहीं है।
So स्पष्ट है?
स्पष्ट है?
Yeah.
आपको समझ में आई बात?
Nothing to do with God, please.
इसका संबंध ईश्वर से नहीं है।
It simply means the one who has these wonderful qualities fully developed within him.
एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पूरे जो सद्गुण है वह पूरी तरह विकसित है।
He's full of wisdom.
उनमें प्रज्ञा है।
He's full of compassion.
उनमें करुणा है.
He's completely liberated from all the chains that bind us.
और जो भी परिवर्तन के लिए रुकावटें हमारे मन में हैं, उनसे वह मुक्त है.
So that's why we say भगवान बुद्ध.
और यही कारण है कि हम क्यों भगवान बुद्ध कहते हैं.
And in fact, Buddhists used this term before it got used in the Hindu context. Buddhists, yeah.
तो हिंदू परिपेक्ष में इस्तेमाल करने के पहले इस शब्द का जो प्रसारण है या जो उच्चारण है वह बौद्धों से हुआ है.
Unfortunately, it's now so common in Indian languages that you can't renew its old meaning.
तो अब यह बहुत मुश्किल है कि इस शब्द का भी अर्थ जो है वो उसको पुनर्निर्माण करना.
So by and large, I try and avoid it.
तो ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि इसे नकारने की या इसे मैं जवाब न देने की.
Buddha is not a god.
बुद्ध ईश्वर नहीं है.
He's one who has fully grasped the real nature of things.
बुद्ध वो है जिन्होंने सत्यता का एक वास्तविक दर्शन किया है.
He's the one who has overcome self craving.
एक वह ऐसा व्यक्ति जिसने जो सेल्फ क्रेविंग मतलब जो जो आसक्ति है उससे मुक्ति पाई है.
He's the one who has overcome all unskillful mental states.
एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सभी अकुशल मानसिक अवस्थाओं के ऊपर कार्य किया है या उसके ऊपर उठे.
I can't hear properly.
आप शांत रहिए क्योंकि आवाज बहुत गूंजती है, हमें उन्हें सुनना है.
Well, give them a... So here they are, the under 16 group. So
we found it very hard to mix with the others.
The older people, yeah.
With the older people, so we found our own group.
Very good.
We were discussing whatever we understood as according to our capacity.
Yeah.
So we want you to take some different session or.
NNBC. Okay. I will meet with you.
And we want 1 hour, please, huh? for discussion. We want 1 hour for discussion.
1 hour for discussion.
We want to interact with you.
Shall I give them 1 hour for discussion?
Yes.
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 Thank you.
Good. I must say, I was very, very pleased indeed to see their group meeting.
मैं बहुत खुश हूँ इन ये जो युवा है, मैं उन्हें बच्चे नहीं कहूँगा, उनके समूह से.
The Dhamma applies to everybody.
क्योंकि धम्म का संबंध हर व्यक्ति से है.
And I should be very interested to meet with them and find out what they're thinking and what they want.
और मैं उनसे मिलना पसंद करूंगा और वो क्या सोचते हैं यह खोजना पसंद करूंगा.
I'm probably not the best person, but I'll do my best.
अब मैं उसके लिए उचित व्यक्ति रहूंगा ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश
करूंगा.
और मैं बहुत उत्सुक हूँ उन्हें मिलने के लिए.
So maybe we do need to form a separate branch.
तो शायद हमें दूसरी ब्रांच खोलनी पड़ेगी. We are always say our dhamma depend on science. Beyond science, we use proper word science. My question is, what is relation between science and dhamma?
Well, you know that.
ऐसे कहते हैं कि धम्म वैज्ञानिक है. हाँ, धम्म विज्ञान के ऊपर आधारित है. तो विज्ञान और धर्म का संबंध क्या है?
You know that I've already mentioned one of the criteria that Baba Saheb had for choosing Buddhism.
मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाबा साहब का एक मापन था बौद्ध धर्म चुनने के लिए.
He chose a religion that supported liberty, equality, and fraternity.
उन्होंने उस धर्म को चुना या उस धर्म को चुना जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता को मानता है.
But a second criteria that he had was that the religion he chose should not conflict with science.
और उन्होंने ऐसा धर्म चुना जो विज्ञान के साथ मेलजोल खाता हो, उसके विरोध में ना रहो.
And this is a very important point indeed.
और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है.
The religion I was brought up with taught that God created the world in 6 days.
जिस धर्म में मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे मुझे यह सिखाया गया है कि ईश्वर ने 6 दिन में विश्व की या इस पृथ्वी की निर्मिति की है.
On the seventh day, he took the day off.
और जो सातवां दिन था, सातवें दिन वो आराम कर रहे थे.
That's Sunday.
वो संडे है.
That's why we have Sunday.
इसलिए हमें संडे मिलता है.
This is true. This is really the case.
यही बात है. हम यानी संडे को छुट्टी क्यों होती है उसका कारण.
The reason why we have a day off on Sunday is because God had a day off.
तो संडे को आपको छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि तब ईश्वर भी छुट्टी पे रहते हैं.
That's one of the things my ancestors brought to you.
तो यही मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया है, बताया है.
Even if you didn't take Christianity, you took the day off.
अब आप क्रिश्चियन नहीं भी है फिर भी आप संडे को छुट्टी लेते हैं.
But yes, that's what the religion taught.
तो यही धर्म ने मुझे पढ़ाया है.
But we know it's not true.
लेकिन हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है.
We know that the world wasn't created just in 6 days.
हम जानते हैं कि यह जो विश्व का जो निर्माण हुआ है यह 6 दिनों में नहीं हुआ है.
People like Charles Darwin and the great geologists discovered the way in which evolution works.
कैसे भी यानी वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने खोजा है कि शायद कैसे यह विश्व की निर्मिति हुई होगी.
The cosmologists know about the Big Bang and all that.
और जो भौतिकी शास्त्र है या जो कॉस्मोलॉजिस्ट है उन्होंने यह ढूंढा है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वह कैसे आई है.
Billions and billions of years are involved in the creation of the universe.
तो करोड़ों करोड़ों वर्ष इसमें लगे हैं जहाँ आज हम इसको विश्व कहते हैं.
But still, 40% of the population in America believes that the world was created by God in 6 days.
अभी भी 40% लोग दुनिया में ऐसे सोचते हैं कि दुनिया का जो निर्माण हुआ यह 6 दिनों में हुआ है.
The most advanced nation in the world, that's what people believe.
सबसे जो प्रगतिशील राष्ट्र है वह उस राष्ट्र के लोग भी ऐसा सोचते हैं.
So Baba Saheb said, well, if there's a conflict between the findings of science and religion, well, how can you reject science?
तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर विज्ञान में और आपके अनुभव में अगर विरोधाभास है, धर्म में अगर विरोधाभास है, तो आप कैसे विज्ञान को स्वीकारेंगे?
So Buddhism has no conflict with science.
तो बौद्ध धर्म का विज्ञान से कोई संघर्ष नहीं है.
It's able to accept the findings of science.
जो विज्ञान के शोध आते हैं उन शोध को बौद्ध धर्म स्वीकारता है.
It doesn't matter how long the universe took to come into existence.
इससे फर्क नहीं पड़ता कितने यानी करोड़ों वर्ष इस दुनिया को बनाने में लगे होंगे.
However long it took it to come into existence, Buddhahood is possible.
कितने भी साल इस विश्व के निर्माण में क्यों ना लगे हो, जो संबोधि है या जो सत्य का दर्शन है वह संभव है.
So, yes, so there's no conflict between Buddhism and science.
तो बौद्ध धर्म में और विज्ञान में कोई संघर्ष नहीं है.
But the truth, the ultimate truth, is beyond science.
लेकिन जो सही सत्य है वह विज्ञान से भी परे है.
The Buddha said that the Dhamma is atarkavacharo. Atarkavacharo.
बुद्ध कहते हैं कि धम्म जो है वह अतर्कवचरो है.
Which means it's beyond the reach of reason.
इसका अर्थ यह है कि यह तर्कों से भी परे है.
The truth that the Buddha saw was not a scientific hypothesis.
जो सत्य बुद्ध ने देखा वह कोई केवल वैज्ञानिक सिद्धांत ही था ऐसा नहीं है.
It wasn't an intellectual understanding.
उनकी वह बौद्धिक उपलब्धि नहीं है.
It's not in conflict with intellectual understanding.
लेकिन यह बौद्धिक उपलब्धि के विरोध में है ऐसा भी नहीं है, उसके विवाद में है ऐसा भी नहीं है.
He saw the truth directly.
उन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा.
प्रज्ञा इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस.
जो प्रज्ञा है वह आपके बुद्धिमत्ता से भिन्न है.
इट्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंटेलिजेंस.
इसका विवाद नहीं है आपके बुद्धिमत्ता से.
बट इट गोज बियॉन्ड इट.
लेकिन आपके बुद्धिमत्ता से परे प्रज्ञा जाती है.
So, yes, Buddhism is not in conflict with science.
तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म विज्ञान से विरोधाभास में नहीं है.
But the prajna that we're trying to develop in Buddhism goes beyond science.
लेकिन प्रज्ञा जो बौद्ध धर्म से आती है वो निश्चित ही बुद्धिमत्ता या विज्ञान से परे जाती है.
It's a very big question, but that's my brief answer.
यह बहुत बड़ा सवाल है लेकिन यही मेरा जवाब है. Why Dr. Ambedkar had not done meditation? बाबा साहब ने ध्यान क्यों नहीं किया?
Well, we know that he did do meditation.
अब हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने ध्यान किया है.
I recently read Nanak Chand Ratu's memories of Dr. Ambedkar.
नानक चंद रत्तू के जो यादें हैं या उनके जो अनुभव उन्होंने लिखे हैं बाबा साहब के साथ वह मैं पढ़ाऊं.
You know that Nanak Chand Ratu was his close assistant at the end of his life.
आप जानते हैं नानक चंद रत्तू को वो उनके निजी सचिव थे.
And he says that every morning Baba Sahib would do puja and then meditate.
और वो बताते हैं कि बाबा साहब हर सुबह उठते थे और वंदना करते थे और ध्यान करते थे.
Another of his close associates, Shankaranand Shastri, also says that Baba Sahib used to recite Om Mani Padme Hum.
उनके दूसरे जो निजी अनुयायी थे, जो करीबी व्यक्ति थे, शंकरानंद शास्त्री, उन्होंने यह कहा है कि बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे ओम और ध्यान यह दोनों चीजें की है.
And as I mentioned on the first night, he even said that it was the reciting of that mantra that kept him alive.
और मैंने यह भी कहा है कि कहीं वो ऐसा कहते हैं कि ओम मणि पद्मे ओम कहने से उन्हें प्रेरणा मिली, वो जिंदा रहे.
It gave him the energy to keep going.
उनको एक ऊर्जा मिली काम करने के लिए.
The deep meaning of that mantra kept him going.
तो जो उस वाक्य का या मंत्र का जो गहरा अर्थ है, उस अर्थ ने उन्हें जिंदा यानी ऊर्जा दी.
So yes, these close associates of him of his reported that he did meditate.
तो उनके जो निजी और करीबी अनुयायी है उन्होंने ऐसी बातें बताई है.
It doesn't seem to be widely known, but that's what they said.
अब बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है. The rape that happens in India, especially NCR region.
NCR
means the states around Delhi. That's the area called Gurgaon.
Yeah.
NCR.
Yeah.
Can we stop that? Can we change the cruel person? And if yes, then how?
Well, it's a very pertinent question. It's a very, very relevant question.
यह बहुत ही लागू या परिस्थिति जन्य ऐसा सवाल है.
It doesn't just happen in the NCR region.
यह केवल NCR में होता है ऐसा नहीं है.
All over India, this sort of treatment women have to suffer.
पूरे भारत में इस तरीके का जो वागरूप जिसे हम कहते हैं बर्ताव जो है महिलाओं को इसका सामना करना पड़ता है.
A very large number of women have suffered sexual abuse of one kind or another in India.
बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस तरीके का जो पीड़ा है, शारीरिक जो यातना है, उससे जाना होता है.
Of course, it's not only in India; it happens elsewhere too.
तो केवल भारत में ही है ऐसा नहीं है. विश्व के अन्य जगहों में और देशों में भी ऐसे होता है.
But it seems to be particularly bad.
लेकिन भारत में यह काफी क्रूर है, विचित्र है.
I think there's something about the traditional Indian ideas about the relations between men and women which is really seriously wrong.
मुझे ऐसे लगता है कि पारंपरिक तौर से जो स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में जो कल्चर जो सांस्कृतिक रूप से जो धारणा है उसमें कुछ तो भी गलतियां है.
But that first evening we heard quotations from the Manushruti.
पहले शाम को जब हमने यह परिषद शुरू की कुछ वाक्य हमने सुने हैं मनुस्मृति से.
And they justified rape.
और वह जो वाक्य है जो रेप है या जो बलात्कार है उसका समर्थन करते हैं.
They justified sexual abuse.
और जिस प्रकार से जो लैंगिक हिंसा है उसका वह समर्थन करते हैं.
So it's very strong in the Indian culture.
यह बहुत ही प्रबल है भारतीय संस्कृति में.
So, well, yes, we do have to address that.
और हमें इसका इसका सामना करना होगा, इसे देखना होगा.
I think we Buddhists have to create a new kind of relationship between men and women.
तो हम बौद्ध होने के नाते एक नया प्रकार का संबंध स्त्री और पुरुष में कैसा हो इसको खोजने की या जानने की आवश्यकता है.
A relationship of genuine equality and genuine respect.
ऐसा संबंध जो गहराई से आदर के ऊपर और समानता के ऊपर आधारित है.
Men need to respect women.
पुरुषों ने महिलाओं का आदर करना चाहिए.
Women need to respect themselves.
और महिलाओं ने भी अपना आदर करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए.
They need to stand up for themselves.
और उन्होंने अपने यानी आत्मनिर्भर होने चाहिए.
They are more and more. They are standing up.
और अभी वे ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं.
But our new Buddhist culture needs to have a new kind of relationship between men and women.
तो यह जो नई बौद्ध संस्कृति आ रही है इसका संबंध भी एक नए प्रकार के संबंध प्रस्थापित करना होना चाहिए स्त्री और पुरुष में.
I notice even amongst my Buddhist friends that their marriages, the relationship between the man and the woman is just the same as it is amongst non-Buddhists.
तो मेरे ऐसे कई बौद्ध मित्र हैं जिनको मिलकर मैंने यह देखा है कि उनके जो संबंध है अपने घर में परिवार में महिलाओं के साथ जैसे अबौद्ध है वैसे ही वो संबंध रखते हैं.
It's still manusmriti.
इसका अर्थ यह है कि अभी भी वह मनुस्मृति है.
But our Buddhism needs to go right into our family life.
तो बौद्ध धर्म जो है वह सीधा हमारे पारिवारिक जो संबंध है जो संस्कृति है वहां जाने की आवश्यकता है.
It needs to go into the relationships there are between men and women.
जो स्त्री और पुरुष में जो संबंध है उन संबंधों में भी यह जाना चाहिए.
And I do notice that's beginning to happen.
और मैंने यह देखा है कि यह धीरे धीरे हो रहा है.
But we all of us need to make a strong commitment to changing this terrible system.
और हमने यह पूरे प्रयास करने चाहिए कि यह जो विकृत या शैतानी जो संस्कृति है असमानता की उसे बदलने के लिए.
A lot, of course, rests with men.
बहुत सारी जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर है.
But you respect women.
क्योंकि उन्होंने महिलाओं का आदर करना चाहिए.
Don't just think of them for sex.
केवल लैंगिक सुख के लिए वे है ऐसा नहीं सोचना चाहिए.
Don't think of them as your servants.
और केवल वो आपके नौकर है या आपकी सेवा करेंगे ऐसा नहीं है.
Don't think of them as just people you can order about.
और ऐसा मत सोचिए कि आप उनको हमेशा ही आदेश देंगे या ऑर्डर देंगे.
And for women, don't think of yourself like that.
और महिलाओं ने अपने आप के बारे में वैसा नहीं सोचना चाहिए.
Refuse to be treated like that.
इस तरीके का अगर बर्ताव आपके साथ होता है तो उसको नकारिए.
Stand up for yourself.
अपने आप के लिए खड़े होइए.
We need to create this new Buddhist culture.
इस तरीके की एक नई बौद्ध संस्कृति निर्माण करनी है.
Real liberty, equality, and fraternity.
वास्तविक रूप में समता स्वतंत्रता और बंधुता.
बाबा साहब didn't say liberty, equality, and fraternity for men.
बाबा साहब ने समता स्वतंत्रता और बंधुता पुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहा.
Not for women.
और महिलाओं के लिए नहीं है ऐसा नहीं कहा.
He didn't say that at all.
बिल्कुल भी या कतई उन्होंने ऐसा नहीं कहा.
So we really need to create this new culture.
तो हमें वास्तविक रूप से यह जो नई संस्कृति है इसका निर्माण करना चाहिए.
But there's a subsidiary issue in here that is a bit difficult to talk about.
What?
There's another issue in here, a secondary issue.
यहाँ पे और एक दुयम समस्या या मुद्दा है जिसके बारे में कहना कठिन है.
It's not easy to talk in a public situation, particularly a mixed public situation.
तो इस तरीके का जो सार्वजनिक और स्त्री पुरुष जहाँ इकट्ठा होते वहाँ पे कहना यह बातें कठिन है.
I think we need to understand sexual energy much better.
और मुझे ऐसे लगता है कि हम में जो लैंगिक ऊर्जा होती है उसे समझने की आवश्यकता है.
We need to understand those forces inside us.
यह जो कामिक ऊर्जा है इस कामिक ऊर्जा को हमने गहराई से समझने की आवश्यकता है.
It's inside all of us, huh?
यह हम सब में होती है.
And it can be very problematic.
और यह बहुत समस्या मूलक या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है.
But there's no real discussion of it.
लेकिन इसका जो चर्चाएं है यह चर्चाएं हम लोग नहीं करते.
I remember when I first came to India, I just never used to hear that word.
जब मैं पहली बार भारत में आया तो ऐसे शब्द भी मैं सुन नहीं पाता था. सुन नहीं सकता था.
I said to friends, are children born from trees in India? Are children born on trees?
तो मैं उनको यह पूछता था क्या जो बच्चे पैदा होते हैं क्या पेड़ पे पैदा होते हैं?
Because you never heard, you said, and you know, sex ever took place.
तो ऐसा आप मान के चलते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है.
It's all kept under the surface.
वो हमेशा ही हम सतह के नीचे हैं ऐसा समझते हैं.
So when it breaks out in violent. Destructive ways.
तो जब कभी भी ऐसी ऊर्जाएं बाहर आती है वो विकृत होती है और हिंसक होती है.
Even in marriage.
शादियों में या विवाह में भी ऐसे होता है.
So we need to face up to the fact this is part of us as human beings.
तो हम एक मानव के रूप में हमारा यह एक हिस्सा है इसको हमें स्वीकारना चाहिए.
And as Buddhists, we need to find a way of coming to terms with this energy.
As a Buddhist,
we need to find a way of coming to terms with this energy.
और एक बौद्ध होने के नाते यह जो हमें ऊर्जा होती है इस ऊर्जा के साथ हम कैसे पेश आए इसके मार्ग हमें ढूंढने हैं.
We need to be able to talk about it, at least men amongst men and women amongst women.
कम से कम इसकी जो चर्चा है महिलाएं अपने आप में और पुरुष अपने आप में कर सकते हैं.
Talking about it intelligently, sensitively.
संवेदनशील होके और अधिक बुद्धिमान होके इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं.
Recognizing it's there and finding skillful ways to express it.
इसे पहचानना और अच्छे कुशल कुशलता से इस कार्य के ऊपर काम इस ऊर्जा के ऊपर काम करना.
We need to change the culture.
संस्कृति बदलने की आवश्यकता है.
It doesn't do anybody any good as it is now.
जिस प्रकार से हम अपने संबंध रखते हैं इससे हमें लाभ नहीं होता.
But that's probably all I can say in this context for the time being.
तो अभी तक के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ.
But we definitely need to confront this violence between men and women.
लेकिन निश्चित रूप से यह जो हिंसाएं जो है स्त्री और पुरुष में इन्हें रोकना चाहिए इसे नष्ट करना चाहिए.
But we need to confront it in ourselves.
और हमारे अंदर यह जो हिंसा है उसे हमने खत्म करना चाहिए.
We need to help each other to get beyond it.
और एक दूसरे को मदद कीजिए इसके परे जाने के लिए.
We need to try to bring about a new kind of culture in India.
नए प्रकार की एक संस्कृति भारत में आनी चाहिए.
Where there's real equality.
क्या वाकई में सामाजिक समानता है.
And there's real respect between men and women.
और स्त्री पुरुष के प्रति एक सच्चा आदर होना चाहिए.
Where sex is an accepted part of life, but not a disruptive one.
अब ये लैंगिकता जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है लेकिन वो हिंसक नहीं है विकृत नहीं है.
So I hope that what I've said is clear enough. It's a big subject.
यह बहुत बड़ा विषय है जो मैंने कहा है शायद आपको स्पष्ट हुआ हो.
But in the end, I believe even this issue is resolved by the Buddha Dhamma.
You believe that in the end it will resolve by Buddha Dhamma?
It's resolved by the Buddha Dhamma.
अंततः मैं इस बात के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि यह समस्या भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है.
बाबा साहब burnt manusmriti.
बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया है.
And it's the manusmriti that is behind this kind of violence.
और इस प्रकार के जो हिंसाएं होती है विकृतियां होती है तो वह मनुस्मृति की मानसिकता है.
That kind of mentality which is part of Indian culture.
और इस प्रकार की जो मानसिकता यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है.
We really need to end that.
और उसे हमें खत्म करने की आवश्यकता है.
One more. Different note if you can.
What youth can do to bring back Buddhism in India?
Ah.
जो युवा जो है वह बौद्ध धर्म भारत को बौद्ध में बुद्धिस्ट इंडिया प्रबुद्ध भारत भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं.
यू कैन डू एवरीथिंग.
आप हर बात कर सकते हैं.
इट्स अप टू यू.
यह आप यह आपके ऊपर निर्भर है. आप क्या करना चाहते हैं.
I'm 66.
मैं अभी 66 साल का हूँ.
I don't know how many years I've got.
अब मुझे पता नहीं मेरे पास कितने साल है.
If you don't do it, it's too late for me.
अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो बहुत कम समय है.
You are the new India.
आप नया भारत है.
If you don't practice the Buddha Dhamma, there won't be Prabuddha Bharat.
अगर आप बौद्ध धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो प्रबुद्ध भारत नहीं होगा.
What you can do is practice the Dhamma deeply yourselves.
क्या आप कर सकते हैं कि धर्म का गहराई से आचरण कीजिए.
Really commit yourself to the practice of the Buddha Dhamma.
वाकई में अपने आप को धर्म का आचरण करने के लिए कटिबद्ध कीजिए.
And communicate the Buddha Dhamma to others.
और बौद्ध धर्म जो है वो और लोगों को बांटिए.
Give them that invitation.
वो सबको आमंत्रित कीजिए इसके लिए.
यही पॉसिबल.
आइए और देखिए.
That's your job.
यह आपका काम है.
I shall retire and sit on a chapoy.
मैं रिटायर होना चाहता हूँ और चारपाई पे बैठना चाहता हूँ.
Clap as you. But it's up to you.
यह आपके ऊपर निर्भर है.
You need to practice deeply and teach others.
गहराई से आप इसका आचरण कीजिए और औरों को संवादित कीजिए.
That's why I'm here.
इसलिए मैं यहाँ हूँ.
I believe strongly in NNBY.
मैं NNBY के ऊपर विश्वास रखता हूँ.
And even in our what was it? The National Network of the Buddhist Children, NNBC. I believe in that too.
और जो NNBC है मैं उनके उसके ऊपर भी विश्वास रखता हूँ.
It's you lot who have to take over from this lot.
इन लोगों से तो बड़ों से जो छोटे उन्होंने अभी अगुवाई लेनी चाहिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
Sayuri and her friends have to take over from all of you.
तो Sayuri और उनके जो मित्र है उन्होंने यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
We must always be bringing in the new generation.
हमेशा ही जो नई पीढ़ी है इसमें आनी चाहिए.
And you've got a different mentality.
और क्योंकि उनका जो उनकी मानसिकता जो है उनका जो स्वभाव है वो अलग है.
You're more educated, you're more free.
आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं. आप ज्यादा मुक्त हैं.
You're more confident.
आप ज्यादा आत्मविश्वासित हैं.
It's up to you to spread the Dhamma.
यह आपके ऊपर निर्भर करता है धर्म का कैसे आप प्रसार प्रचार करें.
It's precisely for this point that I'm here.
इसी के लिए मैं यहाँ हूँ.
You are the future of Buddhism in India.
आप भविष्य है भारत में बौद्ध धर्म का.
When I come back again, you will have to raise me.
Raise me means you have to lift you.
Yes.
जब मैं दोबारा भारत आऊंगा तो शायद आप लोगों को मुझे उठाना पड़ेगा.
You have to do it.
आपको यह करना है.
नमो बुद्धाय. जय भीम.